कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी बच्चे थे ना उधर कौन कौन थे उधर और राजेश कृष्णा हरे कृष्णा। ये आज का जो फल था उसको हम जाम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं? आता जे फळ होतं सकाळी दिलं होतं त्याचं नाव काय? वॉटर ॲपल। आपण मराठीमध्ये काय म्हणतात? जाम ना, पण मी पण जाम म्हणूनच ऐकलंय। वो तो हरी बोल देव की तर नाही प्रभू, वॉटर ॲपल जाम खाल्लं की नाही? ये जीवन का उद्देश्य है, इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। गोकुल धाम में रह के वाटर एप्पल खाओ। अमृत था, अमृत है कि नहीं? सबने खाया ना, तेरा निकाल ला, इकड़चा है ना तेरा, इतना मोटा बड़ा बड़ा हो गया। कौन सा है, कहाँ से आया? बस जीवन सफल। बस जीवन हम गोकुल धाम में ऐसे ही करें, अपना खुद का उत्पादन करें, अनाज सब्जी फल फूल जो भी आवश्यक है, बस सुखी होकर रहे। ऐसी चीजें बाहर कहाँ मिलती है, इस तरह का ताजा ताजा पेड़ से निकाला हुआ बस ताजा आके मिल रहा है, वो भी बिना कोई रासायनिक खाद के इस्तेमाल किए हुए, आराम से बैठ के अमृत की तरह था कि नहीं स्वाद? सबने खाया ना, बस उसको बढ़ाओगे। और हर रोज प्रसाद के समय फल होना चाहिए सबके लिए, बाकी कोई तो इंद्र तृप्ति यहाँ पर है नहीं, यही एक है और कीर्तन करना, ये भरपूर सबको फल खिलाओ। सबको पेट भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट फल सब्जी सब खाना चाहिए, है कि नहीं? किसी को बाहर की दुनिया की यादें नहीं आनी चाहिए, बल्कि बाहर की दुनिया के लोग हम जैसे आके यहाँ पर खा के हम बता रहे, रहे, रहे क्या हम बाहर की दुनिया में क्या हम मिस कर रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है कि नहीं माधव कृपा प्रभु? देखो अपना बिजनेस छोड़ के आए इधर आज आपका जामुन और जाम खाने के लिए। हाँ ऐसे बाजार में मिलता है क्या ताज़ा ताज़ा ऑर्गेनिक? हाँ पैसे दे के भी खरीदेंगे तो उसमें भी कितना रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया हुआ है, मिश्रण किया हुआ है, कुछ पता नहीं। इसलिए बढ़ाओ इसको अभी अंजना में,
इसके बीज रखे हैं इसको भी
जगह जगह, जब अच्छा हो रहा है तो जगह जगह उसको फैलाओ। ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चाहे ना के खाए लेकिन भगवान को अर्पण करके लेकिन उसको निकाल कर छुपा के कमरे में नहीं रखने चाहे तो जाके खाओ लेकिन उसका उसका संचय करके इकट्ठा नहीं करो उसको। एक भक्त बता रहे थे कि उनके उनका जन्म एक गाँव में हुआ, तो उनके गांव में ही एक धनी व्यक्ति था जिसके बड़े बड़े बगीचे थे, फल के पेड़ वगैरह सब बहुत सारे थे, वो पेरू मतलब अमरूद वगैरह सब बहुत सारे अलग अलग फल थे। तो ये बच्चे लोग चोरी करने जाते थे खाने के लिए। अभी किसका बचपन ऐसे चोरी किए वो बिना गुजरा है बताओ है कि नहीं? पेड़ों पे चढ़ के थोड़ा फल निकाल के खा के भाग जाना, हाँ सब किया है ना सबने, मैंने भी किया है, टांग भी थोड़ा एक बार वो फनस के पेड़ पे चढ़ के उधर से गिर के, बचपन यही है अच्छा है, ये वीडियो गेम के सामने बैठ के करना क्या फायदा तो उन्होंने बोला कि हम लोग जाके डर डर के खाते थे, एक बार उन्होंने पकड़ा हमको सबको, हम लोग तीन चार लोग के बच्चे, तो हमने सोचा अभी ख़त्म हो गए हम, लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने बोला जितना चाहे उतना लो लेकिन जितना यहीं पे रह के खा सको उतना ही लो, एक फल भी बाहर नहीं ले जाना इधर से, तुमको खाना है जितना चाहे खाओ इधर से, लेकिन यहाँ बगीचे से बाहर कुछ नहीं ले जाना। क्योंकि जब भी उनको चाहते थे मन करता था आके खाते थे और वो छोड़ते थे लेकिन बाहर नहीं जाना, इकट्ठा कर करके उसको। तो हमारे यहाँ भी प्रचुर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए, भक्तों को जितना चाहिए उतना खाने के लिए मिलना चाहिए, फल सब्जी ये सब चीज़ें जितना भी आवश्यक है, ताकि सब संतुष्ट रहें और ऐसे जीवन का जो एक लाभ है वो सबको मिले। तो लोगों को पता चले कि बाहर की दुनिया में और यहाँ में अंतर क्या है, तो जितने भी हमारे चीज़ लिए अच्छे अच्छे सात्विक आहार हैं वो सब हमको बनाने उगाने चाहिए यहाँ पर। तो हर चीज जो भी आवश्यक है तो अभी इसके ऊपर खूब जोर दे दो,
अंदर लगा रहे हैं,
अंदर भी यहाँ भी, यहाँ भी जब हमको पता चल गया एक बार कि ये फल अच्छी तरह से उग रहा है यहाँ पे, खूब लगा उसको। वास्तव में पहला जब मुंह में मैंने डाला तो ये अमृत ही लगा, मैं ये अमृत से अलग नहीं है। ये आपको ऐसे लगा क्या? लगा नहीं? तो खाल लगा थे गोड़ वाट लगा तो ये सब वाटर एप्पल देख के लोग इधर गोकुल धाम में आएंगे। अरे हमको भी रह लो, ऐसे खाने को मिलता है आप सबको, अरे हम भी आएंगे। तो यहाँ रहने वाले बहुत लोग सब, आप सब इतने तपस्या कर रहे हो इधर जंगल में रह के, भक्तों से दूर रह के, इधर इतना परिश्रम है, दिन रात मेहनत करते हो इधर, फिर ठंडी में, बारिश में, यहाँ वहाँ कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारा फल, खूब खाओ फल, जो भी फल उगाओ यहाँ भरपूर मात्रा में उगाओ और सबको भरपूर दो, जितना खाना हो सबको खाने दो। ये बीमार पड़ा तो भी वो भी जिम्मेदार हो, जिसने ज्यादा खाया वो बीमार हो गया तो उसकी जिम्मेदारी,
हॉस्पिटल भी,
हॉस्पिटल भी उसकी जिम्मेदारी। नहीं, कहने का मतलब है कि सबको अपना अपना, अपनी अपनी सीमा समझनी चाहिए ना। जब हम बोल रहे हैं कि जितना चाहिए उतना खाओ, वो भी थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए ना। कहने का मतलब है कि आनंद से जीना है इधर, कोई संकोच करके नहीं कि अरे बाहर का हमको टीवी नहीं मिल रहा है, बाहर का हमको वो सब जीवन नहीं मिल रहा है ना। वो शहर में कितने आनंद से ले रहे लोग, गाड़ी में घूम 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 करके जाते हैं, हम लोग ऐसे बैठ के खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, वो चूल्हे पे रसोई करते हैं। इसलिए ये आनंद, यहाँ का रहने का आनंद हमको मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है व्यंजनानंद का। क्या है उद्देश्य?
यहाँ पर रहने का आनंद भक्तों को फल फूल सब्जी वगैरह खिला के
खूब खिलाओ,
जितना चाहिए उतना खा। कोई तो सजेशन दे रहा था कि पेड़ के नीचे ही भगवान का एक फोटो रख देंगे।
नव वृंदावन की बात कही थी ना आपसे, न्यू वृंदावन अमेरिका में है ना, तो वहाँ एक भक्त थे, बहुत पुरानी बात है ये, प्रभुपाद के समय की बात है, सब नए नए भक्त थे उधर। तो वैसे सेब के पेड़ भी बहुत हुआ करते थे उधर, एप्पल, तो वो एक पहाड़ पे थे। तो एक भक्त था, उसको सेब खाना बहुत पसंद था, तो वो खाता था। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अरे कंटाला हर बार निकाल के उसको फिर अर्पण करो, फिर खाओ, है ना। तो उसने क्या किया कि वो पहाड़ का पहाड़ ही अर्पण कर दिया। ताकि अभी अर्पण करने का कंटाला नहीं आया, डायरेक्ट जाओ जितना चाहे और कभी भी खाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, भगवान को ठीक से अर्पण करके खाओ, सात्विक आहार खाओ लेकिन भगवान को अर्पण करके प्रेम से। चित्र रख भी सकते हैं लेकिन फिर चित्र का देखभाल करना, सेवा करना कौन करेगा, करेंगे क्या वो? लेकिन इसको गंभीरता से ले लो अभी इस उद्देश्य को। देखो कौन से फल उगते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, केले आते हैं, पपैया आता है, पेरू आता है, अभी ये वाटर एप्पल आता है। हाँ
वाटर एप्पल चार
वाटर
एप्पल आता है, और कटहल,
कटहल आता है, फनस, फनस भी अच्छा है, खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पचन के लिए भारी होता है। हाँ
चूर्ण,
चूर्ण काला वाला,
वाइट
वाइट
जामुन, और जामुन
जामुन भी आता है काला वाला, जामुन भी डायबिटीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा। यहाँ सब ज्यादातर जवान है, जिनको उम्र हो गई, किसी को डायबिटीज है क्या? नहीं ना, फिर भी खाओ तो डायबिटीज नहीं होगा। ऐसे हर दिन, हाँ हर दिन फल होना चाहिए, ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जिसमें जहाँ पे फल नहीं, और खूब होना चाहिए। संकोच करके सबको एक एक ही बांटो, कोई दूसरा मांगे तो बोले नहीं खत्म हो गया, ऐसे नहीं, ज्यादा चाहिए ना, लो खाओ, हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन फिर वो अपने कमरे में जाके नहीं रखो, वो भर भर के वो वैसा नहीं करना, नहीं खाना खाओ। और भी देखो कौन सा फल वगैरह आता है, केला, ये सब चीजों के लिए तो गोकुल धाम बना है ना। अपना अनाज का उत्पादन करो, अपना भोजन का उगाओ, बनाओ, खाओ, हरे कृष्ण जप करो, सेवा करो, आनंद से जियो। लोग यहाँ पर आएंगे, बाहर जाने के लिए आवश्यकता नहीं, लोग यहाँ पर आएंगे देखने के लिए, आपका वाटर अपन खाने के लिए आएंगे, आप सबको देखने के लिए आएंगे कि कैसे जीते हैं, आप सब इतने खुश कैसे हैं। उनको बताओ हम लोग रोज वाटर एप्पल खाते हैं, पपैया खाते हैं, है कि नहीं? सब इस बात से सहमत है कि नहीं? तो हर सीजन में, हर ऋतु में जितने भी फल आते हैं वो तो सब प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। और फिर रसोई घर में किसी को चाहिए तो फिर फलों से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, किसी कोई फल का चटनी बनाए, कोई सॉस बनाया, कुछ क्या बनाया, कुछ स्वीट बनाया, कुछ बनाया। तो अभी सारांश में बताओ कि अभी क्या मिशन दिया है जिनानंदन प्रभु को?
फल ही फल,
फल ही फल। पिछली बार हमने क्या दिया था? फूल ही फूल, और अभी फल ही फल। उसी तरह से जल ही जल, जल भी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, जल की भी कोई कमी नहीं। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करना है, व्यर्थ नहीं डालना। जब कोई चीज बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है और आसानी से उपलब्ध होती है तो लोगों की वृत्ति और आदत बन जाती है उन चीज़ों को व्यर्थ गंवाना। जैसे शहरों में क्या देखते हैं, पानी नल में आता है तो आ रहा है ना, खोल के रखो, बाकी कुछ कर रहे, नल में पानी चल रहा है क्योंकि आ रहा है पानी नल से, तो खोल के रखते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं बहुत सारा। लेकिन ऐसे हमको नहीं करना, बड़ी मात्रा में उपलब्धि हो, आसानी से उपलब्धि हो, वेस्ट नहीं करना, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। यदि हम ज्यादा जिसकी चीज तो चीजों को व्यर्थ करते हैं तो फिर भगवान चीजों को वापस खींच लेते हैं। ये जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करें। तो भरपूर पानी मिले तो क्या है, हम सब्जी उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, पेड़ों के लिए, फलों के लिए, सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं। फूल ही फूल, फल ही फल, जल ही जल, हरि नाम ही हरि नाम, वो भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गोकुलधाम में केवल खाने के लिए आए, हमारा मूल उद्देश्य है हरि नाम, भगवान की भक्ति। और भगवान का भक्ति करते करते ये सब आनंद से जी के करते हैं, ये होना चाहिए। फिर सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, उत्साह से सेवा करेंगे सब लोग। बराबर है कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में फल होना चाहिए, सब जगह फल लाओ, फल लगाओ, भरपूर फल अपने सारे गोकुलधाम के जमीन में लगाओ, जंगल में भी लगाओ, फल ही फल सही है होना चाहिए। ये पंछियां भी आएंगे, बंदर भी आएंगे, ये भी समस्या है, बाकी भी चीज आएंगे, लेकिन पंछी आएंगे तो ज्यादा रंग बिरंगे पंछियां, पोपट, ये तोते, ये वो सब दिखाई देंगे। फिर उनके द्वारा क्या होता है, वो भी बीज लेके इधर उधर फेंकते, उधर अपने आप से और सब पेड़ उग जाते हैं। इस तरह से हमारी पूरी जो जमीन है उसे रंग बिरंगी होनी चाहिए, फूलों से, फलों से, हरा भरा सब होना चाहिए। सूखा जमीन कहीं नहीं होना चाहिए, बराबर। खुला जमीन जिसमें केवल लाल मिट्टी दिखता है तो वो नहीं दिखना चाहिए। केवल जहाँ पे हमने गोबर का लेप लगा के हमको आंगन चाहिए, जैसे मंदिर के सामने है या पीछे है, वो अलग बात है कि ये खास उद्देश्य के लिए रखा है। तो साधारणतः जमीन हरा भरा होना चाहिए, गर्मी के मौसम में भी। तो ऐसा नहीं कि अकेला अंजनानंदन प्रभु को एक दो भक्तों के साथ ये करना चाहिए, आप सब कर सकते हो। जहाँ भी जाओ, जगह ले जाते जाते बीज लगा के जाओ, सबको दे दो बीज।
कल पिछले दो तीन दिन से सबको फूलों के पेड़ लगाने में लग गए, अपने अपने फूलों के पेड़ सब लोग लगा रहे हैं। तो उसी तरह से सबको अपने अपने फलों के पेड़ भी अगर दे दिए,
हाँ,
तो सब उसके लिए
बहुत अच्छा। जैसे फूलों के लिए कर रहे हो, फलों के लिए भी चालू करो। अब सब लोग सोच रहे हैं एक के बाद एक ये सब बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे फूल का बोला, अभी फल का बोल रहे हैं, फिर कल क्या होगा पता नहीं। लेकिन फायदा किसको होगा? हाँ, यहाँ जो रह रहे हैं सब भक्तों को ही होगा ना। और जो वातावरण है देखने के लिए, इतना बदल जाएगा ना, सब हरे भरा होता है ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि नहीं? हरियाली देखकर, अच्छे अच्छे पेड़ फूल सब देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चित्त में भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए यहाँ रह के ऐसे ही सकारात्मक एक प्रसन्न मानसिकता से हमको अपनी सेवा, भजन, साधन सब करना चाहिए। फिर ऐसे वातावरण में परिश्रम करना भी अच्छा लगता है, परिश्रम से हटना नहीं चाहिए हमको। जब हम बोलते हैं कि खूब खाओ, हम ये नहीं बोल रहे कि खाओ और सो। गोकुलधाम आलसी जीवन के लिए नहीं है, है ना, परिश्रमी जीवन के लिए है, परंतु ये आनंद का परिश्रम है। मुरलीवादक प्रभु कसा होणार, एकदम फळ फुल सगळीकडे राहिली तर
आनंद
आनंद होणार। मुरलीवादक प्रभु कैसे रहेगा? सब लोग खुश रहेंगे कि नहीं? गणपत कैसे रहे? तो ये सब याद रखो, एक कल्पना गोकुलधाम। और आगे चल के पानी की व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी, हमारे भक्तों को तो और अनाज के लिए भी अब ज़्यादा कर सकते हैं। आज की तारीख में हम लोग अनाज थोड़ा बहुत बाहर से भी लेते हैं, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। इतना हो सके कम से कम खाद्य पदार्थों के लिए तो हमको गोकुलधाम में ही सब कुछ उगाना चाहिए। इकड़े ऊस होत नाही ना, ऊस इकडे केला तर मग त्याच्या गुळ तयार करू शकतो आम्ही, मग गुळ वापरायचं, साखर वगैरे वापरायचं नाही, स्वतः गुळ तयार करायचं। आणि ते वापरायचं, स्टीविया करा, स्टीविया वापरा, चलो थोड़ा संक्षेप में करते हैं, क्लास तो आधा इधर ही हो गया। साधना साधना सबका साधना कैसे चल रहा है? हाँ, जब हम खाने के ऊपर जोर दे रहे हैं तो साधना के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि केवल खाने के फल खाओ और ठीक है, मुख्य बात है हमारा साधना, ये ठीक रहेगा तो बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, है कि नहीं? सबका माला हो रहा है ठीक से? हाँ, ऐसे तो है कि हमारे अंदर
अंदर आ
गया। ठीक है ठीक है, चलेगा, सेवा देना है, ठीक है। ये क्या है, भारत में आप लोग को शायद पता है कि नहीं पता है, जो भगवान ने विशेष सृष्टि की है मनुष्य समाज की, भारत की, भारत में मनुष्यों के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि कंठ में एक माइक्रोफोन लगा के दिया है। ये पढ़ाए नहीं आपको स्कूल में? अरे क्या स्कूल में पढ़ाया? जन्म से ही इधर ऐसे अंदर आता है वो माइक्रोफोन में। बोलते हैं एकदम ऊंचे स्वर में निकलता है। वो हल्के स्वर में भारत में बात ही नहीं कर सकते। तो साधना, हाँ, सोलह माला जरूर करिए, सब कर रहे हैं ना, और जब के समय कितने भक्त सोते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। एक दो तीन, अरे रे रे रे,
माइंड
कुछ लोग बिस्तर में सोते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे सोते हैं।
कभी कभी हमने देखा है कि जो भक्त सोते हैं ना जब के समय, ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि शायद रात को भी ऐसा नींद नहीं सोते। कभी क्लास के समय भी ऐसे सोते हैं, एकदम इतनी गहरी नींद में कि कभी दिल टूटता है उनको जगाने के लिए। लेकिन नींद के समय नींद, क्लास के समय क्लास, जप के समय जप, प्रसाद के समय प्रसाद, सेवा के समय सेवा, अपने अपने समय में सब कुछ करना चाहिए। एक समय में जो एक काम करना चाहिए उस समय में दूसरा काम नहीं करना चाहिए। अभी जप का समय है वो सोना नहीं, वो सोने का समय नहीं, और जब सोने का समय हो गया फिर उस समय अरे दिन भर जप नहीं किया इसलिए अभी नींद को नहीं करके जप करना, तो फिर अगले दिन सुबह नहीं उठ पाएंगे फिर, है कि नहीं? इसलिए हर चीज़ को जो निर्धारित समय उसके लिए है उसी में करना चाहिए बस। ये इसको बोलते हैं समय की का व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। लोग अक्सर बोलते हैं समय नहीं है, समय है सबके पास 24 घंटे है, लेकिन जिस समय पे किसी चीज़ को करना चाहिए उसी समय पे करना चाहिए। उस चीज़ को उस समय पे न करें न करके दूसरे समय पे करेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाता है, फिर समय कम पड़ जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सही समय पे सही चीज को सही तरह से करना। क्या, कौन सी चीज? सही समय पर सही चीज को सही तरह से करना। कभी कभी रात को सोते नहीं, गाड़ी चलाते, फिर गाड़ी चलाते, मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ था 2006 साल में गाड़ी का। हम पीछे बैठे थे, हमारे एक भक्त चला रहे थे, रात को सोया नहीं था उन्होंने ठीक से, तो गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ गई, उसमें एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्त हैं इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा। हमें वो पता है ना, वो घटना जो वृंदावन में हम परिक्रमा में गए थे, वापस आ रहे थे, हाँ ड्राइवर,
हाँ
पता है ना वो भी। तो अब हर समय पे सही समय पे सही चीज को करना, जप के समय सोना नहीं। मैंने एक भक्त को देखा खाते समय भी सो गया। हाँ ऐसे भी मैंने देखा है। तो इसका मतलब है कि रात को हम सही तरह से नहीं सो रहे हैं, क्यों हमको जप के समय नींद आनी चाहिए? क्लास के समय सोना, जप के समय सोना, ये इससे क्या होगा, हम हमारा चित्त जो है ज्यादा तामसिक हो जाएगा। जब ऐसे मीटिंग वीटिंग करते हैं उस समय भी बहुत लोग सो जाते हैं। तो इसलिए जप के समय यदि किसी को नींद आए या क्लास के समय, तो खड़ा होना चाहिए। खड़े होने पर भी नींद आए तो चलना चाहिए। इंग्लैंड में जब देखा वहाँ पे आश्रम में थोड़े वृद्ध भक्त रहते हैं, वो चलते समय भी सोते हैं जप करते समय। पहली बार हमने देखा। एक आदत जब बन जाती है ना ऐसे, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब के रात को जल्दी सोना चाहिए और अच्छी नींद लेके उठो, और उसके बाद फिर ताज़ा फ्रेश होके आ जाओ जब के लिए बैठो। और ध्यान से सुनो, स्पष्ट उच्चारण करो और ध्यान से सुनो। और ये याद रखो कि हम क्या कर रहे हैं, किनका नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर ऐसे नींद नहीं आएगी। और नींद आएगी तो खड़ा हो जाना है, खड़े होकर भी नींद आ रही है तो चलते करो, हैं? लेकिन जब के समय झोपने, जब जब कराए तो झोपने, ठीक है? क्लास के समय भी बहुत लोग सोते हैं क्लास में, है कि नहीं? क्लास के समय भी सोना नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आदत लग जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सब सुबह आते हो, सब सुबह कार्यक्रम में सब लोग आते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सब करने के लिए आए हैं ना, गोकुलधाम में रह के नहीं करेंगे तो फिर और कहाँ संभव है, है कि नहीं? तो आप में से कितने लोग सुबह को अच्छी तरह से चल मंगल आरती वगैरह करके करते हो?
प्रयास
कितने लोग नहीं कर पाते हैं? लेट हो जाते हो? नहीं तो आदत बनाओ, हाँ जल्दी सोना है सबको, और रात को बहुत भारी मत खाओ, ज़्यादा पेट भारी रहेगा तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा, हल्का रात को खाओ, हाँ ठीक है। लेकिन सुबह की साधना बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक भोजन यही है। तो शरीर के लिए भोजन जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी आत्मा के लिए भोजन है। सुबह का कार्यक्रम हमारा अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सारा दिन हमारा बढ़िया जाएगा। तो ये भी एक वातावरण हमारे मंदिर में यहाँ बनना चाहिए। वहाँ देखो रुक्मिणी रमन प्रभु हमारे लिए एक आदर्श है कि नहीं? 2:30 बजे उठते हैं कि नहीं रुक्मिणी रमन प्रभु?
2:30 बजे,
2:30-3 बजे रोज सुबह उठ के जप करते हैं। उधर अकेले ये एक दो भक्ति रहते हैं साथ में, लेकिन 2:30-3 बजे उठ के स्नान वान करके जप खत्म करना। देखो इसको बोलते हैं निष्ठा और श्रद्धा, और फिर दिन भर मेहनत, ऐसे नहीं कि आलस करके बैठते हैं। तो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कहाँ अकेले अंदर तकरार नहीं करते, हमको मंगल संग नहीं मिलता है, ये नहीं, बस करते अपने इसमें, ऐसा हमको होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। है कि नहीं? केवल उनको पढ़ाए भी इतना ज्यादा नहीं होता है, फिर भी देखो निष्ठा देखो ना, श्रद्धा देखो। बड़े बड़े डिग्री प्राप्त PhD वालों से भी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं वो। तो भौतिक शिक्षण का कोई मतलब नहीं इसमें, हमारी श्रद्धा कितनी है, निष्ठा कितनी है, आसक्ति कितनी है, लगाव कितना है इन चीजों से, फिर हमारा जीवन अच्छी तरह से बढ़ेगा, आध्यात्मिक जीवन। ठीक है, तो सब लोग प्रयास करना, ये एक सुवर्ण संधि है, सुवर्ण अवसर अपनी साधना को ठीक करने के लिए, अपना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इधर रह के हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर क्या लाभ है ना? इसलिए आज से सब लोग प्रयास करना, हाँ ठीक है। जो जो कमजोर है अपने सुबह के कार्यक्रम में, सबको पता है कौन कमजोर है कौन नहीं है, तो सब अपने अपने ओर से देख के अभी स्ट्रांग करो। ठीक है, आए तो फायदा किसका होगा इसमें? हाँ, और फिर सब कुछ बढ़िया जाएगा इसमें। तो आज इष्ट गोष्ठी जैसे ही हो गया नहीं? ये भी जरूरी है कभी कभी, भागवत क्लास भी होता है। समय क्या हुआ?
दस।
कोई प्रश्न वगैरह है किसी को?
हाँ जी, जब से संबंधित है कि जब 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 करते हैं तो बैठते हैं ऐसे, जब भी करते हैं साथ में लेकिन फिर माइंड मन जो है सब जगह घूमने लगता है, और हम स्पष्ट उच्चारण करने 16 अक्षर का नाम भी ले रहे हैं, तो ये सही जप है कि और भी करना है?
सही जप तो नहीं है, मन को केंद्रित करना चाहिए भगवान के नाम के ऊपर, परंतु मन का ये स्वभाव है, मन तो करता रहेगा ऐसे, मन इधर उधर भागेगा, मन अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। अपना काम क्या करना है? मन को लगाम देना है, लगाम लगा कर फिर से मन को खींच के लाना है हरि नाम के ऊपर। क्या आवाज़ तो है? कहाँ है? इतने प्राणियों को भगवान ने बनाया है ना, 84 लाख योनि जब बोलते हैं, कितने 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 योनि, कैसा कैसा जीवन, वो भी मनुष्य हुए थे कभी एक जन्म में, लेकिन ये कीड़े भाग्यशाली है क्योंकि गोकुलधाम में वो भी हरि नाम सुनते होंगे कभी ना कभी। तो मन को केंद्रित करने के लिए मन को फिर से खींचना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जप अच्छी तरह से हो जाए, मन भटके ना, इधर उधर मन ना जाए, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो साधना अच्छा करते हैं उनके दूसरों के प्रति व्यवहार कैसे रहना चाहिए? चाहे हमारी साधना अच्छी हो या ना हो, व्यवहार सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, जैसा कि एक वैष्णव के लिए होना चाहिए वैसे होना चाहिए। सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना, सम्मान से बर्ताव करना, मिलजुल के सेवा करना, कोई बीच में स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, बस तो ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। लेकिन जब हम अच्छी साधना करेंगे और वास्तव में हृदय से करेंगे तो अपने आप ये अच्छा हो जाएगा, अपना व्यवहार भी सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे भक्ति में आने से पहले एक स्वभाव रहा है ना, तो वो स्वभाव इतना आसानी से बदलता नहीं है, तो इसलिए हमको कभी कभी प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुसार हम लोग कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, पुरानी आदत है ना, तभी से आती है। तो यदि वो स्वभाव हमको कोई गलत चीज़ करने के लिए या बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए अपने आध्यात्मिक बुद्धि से। और जो हमारे स्वभाव के अनुसार कृष्ण के लिए अनुकूल कोई वृत्ति आती है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न टीका? सब लोग खुश है ना इधर? उद्धव हरि प्रभु, हाँ हरि राम प्रभु।
प्रभुपाद प्रभु कही थी दूसरा जो कीर्तिकार से कौन से हम लोग लेक्चर्स सुनते हैं, कभी कभी भक्तों का प्रश्न होता है कि हम लोग जाके थोड़ा हियरिंग करके आएंगे तो हम लोग को थोड़ा प्रेरणा मिलेगा, तो फिर हमारा चर्चा होता है कि प्रभुपाद का बुक्स हम लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा, तो ये दोनों का बीच में
देखो गोकुल धाम में ये सारे जो उपकरण है, टेप रिकॉर्डर है और ये सब सुनने का इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण, वो यहाँ यहाँ नहीं है, इस प्रकल्प में तो नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कान में डाल के सुनना, ये सब यहाँ तो अनुमति नहीं है इसके लिए ना, क्योंकि ये प्रकल्प अलग है, हटके है। जो शहर में रहते हैं, भले वो भक्त लोग करें ना करें, वो अलग बात है। लेकिन गोकुल धाम में खास करके, क्योंकि हम आधुनिक तकनीक से बने हुए जो उपकरण आदि हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, और करते भी हैं तो बिल्कुल जहाँ अति आवश्यक हो बहुत सोच समझ के उसको करते हैं। परंतु ये सब साधारण चीज़ें हैं, इनका उपयोग हम यहाँ नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में ये सब कहाँ था? हाँ, ये तो पिछले 100 साल में की बात है ना, 50-100 साल से ही हो रहा है ये सब। इसके पहले कहाँ था? लोग पढ़ते थे ना किताब, तो हमको भी ऐसे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सुनने की आदत। जो चर्चा करते हैं भक्त लोग, क्लास देते हैं, उसमें से सुन के हमको आदत अपना कराना चाहिए, खास करके जो गोकुलधाम में रहते हैं भक्त लोग। हाँ, तो हमारी प्रेरणा, हमारा सब कुछ प्रभुपाद की किताबों के पढ़ के मिलना चाहिए, क्लास सुन के मिल करना चाहिए, भक्त लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं शास्त्रों का, उससे आना चाहिए, हमारे हरि नाम और कीर्तन से आना चाहिए, हमारी सेवा से आना चाहिए, वैष्णवों के प्रेम के संग में आना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं, ठीक है? इल्ला बेड़ा, हाँ हाँ उत्तरवारी।
तो यहाँ नहीं करना, लेकिन सपोज मैं घर जा रहा हूँ, तो गाड़ी में मेरे दिल से तो मैं गोकुल धाम का बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं मेरे बारे में बोलूँ कि मैं उसका जो सुनता हूँ मोबाइल, तो वो एक आइडिया, एक गोकुल धाम वासी के लिए आइडियल स्टेप है कि नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे ठीक वो
नहीं,
लोगों
कोई
देते हैं।
दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे कोई सुविधा यदि उपलब्ध है और हम प्रभुपाद जी का या अन्य भक्तों का प्रवचन सुनना चाहते हैं, ठीक है, सुन लो उधर बाहर, लेकिन कम से कम गोकुल धाम में नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि फिर हर हफ्ते हम बेलगाम जाएंगे सुनने के लिए, ऐसा भी नहीं। ये एकाध बार कभी हम गए, जैसे भी घर जाने की बात करो तो साल में एक बार जाते कभी, तो एक बार गए सुना, ठीक है, लेकिन उसकी आदत भी नहीं बनानी चाहिए। आदत किसका होना चाहिए? हमको स्वावलंबी इसमें भी होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट, उपकरणों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए यहाँ के अनुसार। किताबों को साथ में रखो, जब भी मन करे तो किताब पढ़ो। ठीक है, तो मूड बनाए रखने के लिए भी हमको प्रभुपाद की किताब है, हमारा साधन भजन है, फिर वहाँ भी कोई मंदिर है, भक्तों का संग है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक आध बार जैसे साल में एक बार गए, थोड़ा वहाँ सुना, तो ठीक है, सुन सकते हो, हाँ, लेकिन उसका उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि आदत बन जाएगी तो फिर गोकुल धाम में आके मुश्किल हो जाएगा कि हमको चाहिए, उसके बिना नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब बाहर जाते हैं और वहाँ पे उपलब्ध है तो ठीक है, कर लो। करेक्ट, आगे रास्ता में यहाँ के जीवन शैली का आदत की आदत हो जानी चाहिए, ताकि बाहर भी जाएंगे तो साथ में गोकुल धाम को लेकर जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। उल्टा नहीं कि गोकुल धाम में आएंगे तो बाहर की आदतें यहां लेकर आएंगे, नहीं, वैसे युक्त वैराग्य के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा से बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं और दुनिया भर में हमारे भक्त लोग सब करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है उसके बारे में। हाँ, समझ गए ना, केवल गोकुल धाम के जो एक विचारधारा है उसके अनुसार ये अलग है, क्योंकि यहाँ जो एक जीवन शैली हम बनाना चाहते हैं उसके अनुसार हम ये सब आधुनिक उपकरणों को त्याग रहे हैं ना। तो यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं उनको ये इस जीवन शैली की आदत बननी चाहिए, ये बात ठीक है, स्पष्ट है ना इसके बारे में सब। तो मोबाइल देखो, हमको समझना चाहिए कि गोकुल धाम किसके लिए बना है, किस चीज के लिए बना है। अभी हम क्रॉस पे जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, वो केवल बात करने के लिए, किसी को हमको जरूरी बात करना है, बस उसके लिए जाना। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ के फिर हम फोन के ऊपर प्रवचन सुनते रहें, कीर्तन सुनते रहें, फिर वो एक आदत बन जाएगा। हालांकि वो भी कृष्ण भावनामृत से संबंधित है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा कि गोकुल धाम के जीवन शैली के हिसाब से फिर वो एक इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए फोन का भी उपयोग करना है गोकुल धाम में रहते हुए तो केवल जरूरी बात करने के लिए, है तो
हमारा सात्विकता का एक लक्षण होता है कि स्थिरता एक चीज को करनी है, और जब के समय या सेवा करते समय अस्थिरता आ रही है मन के डायरेक्शन से तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, तो सात्विकता नहीं है इसके लिए गलत हो रहा है, सात्विक बन जाएंगे तो स्थिर हो जाएंगे या
बस हरि नाम ले लो। जब भी कुछ गड़बड़ होता है और दुविधा में पड़ जाते हैं हरि नाम बस सारे समस्याओं का समाधान। हाँ ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सावधान सब करो क्योंकि अभी ये सब कोरोना के केस वेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अभी खूब बाहर जाना आना थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं करना अभी थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो आप सब खुश रहना, ठीक है, साधना भी ठीक करना, सुबह का कार्यक्रम भी ठीक ठाक करना, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गोकुल धाम की जय। गोकुल धाम निवासी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।